ये आकाशवाणी है। अब आप फरहतनाज से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वारसा में पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डुडा से भी मुलाकात करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री का औपचारिक स्वागत किया जाएगा। वे अज्ञात सैनिकों के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कारोबारियों और पोलैंड के गणमान्य लोगों के साथ बातचीत करेंगे। कल रात वारसा में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का भारत सभी से जुड़ाव और सबका विकास और कल्याण चाहता है। श्री मोदी ने कहा कि दशकों से भारत की तटस्थता की नीति रही है, लेकिन आज भारत की नीति सभी देशों से घनिष्ठ संबंध बनाने की है। उन्होंने कहा कि भारत का स्पष्ट तौर पर यह मानना है कि ये युग युद्ध का नहीं है। भारत संघर्ष को सुलझाने के लिए बातचीत और कूटनीति में विश्वास करता है। श्री मोदी ने कहा कि भारत शांति का पक्षधर है और अब दुनिया भारत को विश्व बंधु के रूप में सम्मान देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो देशों पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा के पहले चरण में कल वारसा पहुंचे। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत पोलैंड मित्रता को गति मिलेगी और दोनों देशों के लोग लाभान्वित होंगे। पिछले 45 वर्षों में ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पोलैंड की पहली यात्रा है। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमिर जेलेंस्की के निमंत्रण पर कल यूक्रेन पहुंचेंगे। सरकार ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश दिया है कि वे आरजीकर मेडिकल कॉलेज घटना में दुष्कर्म पीड़िता की पहचान से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करें। न्यायालय ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को निर्देश दिया है कि वे मृतका के नाम के सभी संदर्भ और तस्वीरों के साथ वीडियो क्लिप तुरंत हटाएं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कहा है कि वे न्यायालय के आदेश के अनुपालन के बारे में साइबर लॉ लीगल .in पर सूचित करें। आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली जिले के अच्युतापुरम विशेष आर्थिक क्षेत्र में फार्मा कंपनी के रिएक्टर में कल विस्फोट में मृतकों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने इस घटना के कारणों का पता लगाने के लिए एक उच्च स्तरीय जांच कराने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अगर यह घटना अनदेखी के कारण हुई होगी तो फैक्ट्री प्रबंधन के विरूद्व कड़ी कार्रवाई की जाएगी। श्री नायडू ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया और आश्वस्त किया कि सरकार प्रत्येक पीड़ित की सहायता की पूरी जिम्मेदारी लेगी। श्री नायडू आज अच्युतापुरम का दौरा करेंगे। वहां वे मृतकों के परिजनों और घायलों से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली जिले की फैक्ट्री दुर्घटना में मृतकों के प्रति शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के निकट संबंधी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता निधि से 2 लाख रूपये और प्रत्येक घायल को 50,000 रूपये देने की घोषणा की है। असम में राज्य मंत्रिमंडल ने मुस्लिम निकाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 और नियमावली को निरस्त करने संबंधी विधेयक को मंजूरी दे दी है। अधिनियम में विशेष शर्तों में अल्पायु में विवाह की अनुमति दी गई थी। राज्य मंत्रिमंडल ने इस वर्ष के आरंभ में ही इस अधिनियम को निरस्त करने का फैसला किया था। बैठक में अधिनियम को निरस्त करने के लिए विधेयक लाने की मंजूरी दे दी गई। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि असम की बेटियों और बहनों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए बाल विवाह के विरूद्व महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। राज्य विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता भारतीय पुरुष हॉकी टीम का भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर प्रशंसकों और उड़ीसा सरकार ने भव्य स्वागत किया। उड़ीसा निवासी डिफेंडर अमित रोहिदास को मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और उप मुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंह देव ने 4 करोड़ रूपये का विशेष नकद पुरस्कार दिया। द वॉल के नाम से प्रसिद्ध गोलकीपर श्रीजेश को 50 लाख और अन्य खिलाड़ियों को 15-15 लाख रूपये का नकद पुरस्कार दिया गया। केंद्र सरकार ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता और पूर्व हॉकी गोलकीपर पीआर श्रीजेश को 2 करोड़ रूपये का नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है। कल मुख्यमंत्री पिनरई विजयन की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। खेलो इंडिया अस्मिता योगासन लीग पूर्वी क्षेत्र आज से बिहार के पटना में पाटलिपुत्र खेल परिसर में शुरू होगी। 3 दिन की ये लीग 24 अगस्त को समाप्त होगी। बिहार योगासन खेल परिसंघ पहली बार इस लीग की मेजबानी कर रहा है। इस लीग में पूर्वी क्षेत्र के 12 राज्यों से 500 महिला खिलाड़ी भाग लेंगी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।